ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहां आकर आपने पहली बार अपना नया परिचय प्राप्त किया कि आप कौन हैं। कौन हैं आप? आत्मा है। मैं जीवन ऊर्जा हूं, चैतन्य शक्ति, आत्मा। ऊर्जा है तो जरूर ऊर्जा का स्रोत भी है। साइंस ने भी प्रूव किया है कि इस धरती का मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्रिएट ही तब होता है जब सोर्स है। बिना सोर्स के वो नहीं हो सकता। तो हम जीवन ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? वो कौन है जिसके लिए आप उनकी ओर इशारा करते आए हैं सदियों से? परमपिता परमात्मा। आज तक आपने देखा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा, इस धरती पर जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है, हताश होता है, डिप्रेस होता है, बीमार होता है, कोई प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस से घिरा हुआ है, तो वो कोई ना कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं कि प्लीज आप हमको गाइड करो, है ना? कुछ सोल्यूशन बताइए, मैं इस बात से कैसे निकलूं? और हमेशा उत्तर यही मिलता है, कनेक्ट विथ सुप्रीम, है ना? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स जीवन में हैं, चाहे बीमारी, चाहे चैलेंजेस, चाहे दुख, अशांति, ये सब का एक ही कारण है, ऊर्जा की कमी, शक्ति की कमी। और तब सभी इशारा उस ओर करते हैं कि अब आवश्यकता है कि आप उनसे कनेक्ट होके अपनी आप को चार्ज कर लो, अपने आप को चार्ज कर लो, ऊर्जा से भर दो, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चार्जिंग की कमी के कारण, एनर्जी की कमी के कारण, और इसलिए उसे दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हैं, है ना? तो जब भी लो फील करते हैं, दुखी फील करते हैं, बीमार परेशान फील करते हैं, तब उनको याद करते हैं, है ना? इसलिए कहते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होई। तो यहां आने पर आप भाग्यशाली हैं कि आपको उनका परिचय मिल रहा है आज, क्योंकि जाने अनजाने हम सब उनको आज तक याद करते आए, पुकारते आए, पूजते भी आए, मानते भी हैं, है ना? अपने अपने तरीके से, अपने अपने समय पर, अपनी अपनी जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हम उनको याद तो करते हैं, किया है ना? लेकिन आज तक उनका सत्य कंप्लीट परिचय नहीं मिला। जिन्होंने उन्हें जैसा महसूस किया वैसा एक्सप्रेस किया, जैसे संत मीरा थी, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, मोर मुकुटधारी, पीतांबरी ड्रेस, बड़ा सजा सजाया रूप, है ना? लेकिन दूसरी ओर संत सूरदास जी ने यह कहा है अपने एक दोहे में, बिन पग चाले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। पैर नहीं है फिर भी चल सकते हैं, कान नहीं है फिर भी सुन सकते हैं, हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से मेंशन किया वो है नॉन फिजिकल फॉर्म, और मीरा जी ने जिस तरह से एक्सप्रेस किया वो है फिजिकल फॉर्म। आखिर भी सच क्या है? इसलिए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत ऐसी। तो हमने अपनी अपनी भावना के अनुसार अपने अपने तरीके से उनको अनुभव किया, एक्सप्रेस किया। आपने बचपन में वो स्टोरी सुनी होगी, 5 ब्लाइंड पर्सन थे, नेत्रहीन व्यक्ति, जो हाथी के बारे में बात कर रहे थे। और उनको जानना था ये हाथी दिखता कैसे है ना। तो एक ने हाथी के बॉडी को हाथ लगाया और कहा, हाथी जो है ना वो दीवार की तरह होता है। दूसरे ने हाथी के पैर को हाथ लगाया, कहा, हाथी जो है वो खंभे की तरह होता है। तीसरे ने हाथी के सूंड को हाथ लगाया तो कहा, हाथी जो है वो सर्प की तरह होता है। जिसने पूंछ को हाथ लगाया कहा, वो रस्सी की तरह होता है। और जिसने कान को हाथ लगाया उसने कहा, वो सुपड़ी की तरह होता है। सच पांचों ही राइट थे। जो देख नहीं सकते, टच करके जो फील करेंगे वही एक्सप्रेस करेंगे, जो एक्सपीरियंस करेंगे वही एक्सप्रेस करेंगे। तो सही है, पांचों ही अपनी जगह पे। लेकिन कंप्लीट परिचय नहीं मिल सका कि ये हाथी जानवर दिखता कैसा है, कंप्लीट नहीं पता चला। तो आज तक हमने परमात्मा के बारे में जो कुछ भी सुना, जाना, समझा, अनुभव किया, वो सब टिट्स बिट्स में है, पार्ट है, कंप्लीट नहीं है। और इतने ज्यादा वैरायटी ओपिनियंस हैं, इतने ज्यादा उनके बारे में मान्यताएं हो गई है। आज आत्मा की बात करें ना, तो फिर भी हम सब मानते हैं कि हाँ, चैतन्य शक्ति है, वो जीवन सत्ता है जो इस शरीर को चलाती है ना। इवन साइंस भी मानती है, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर जाता है, कहता है टेक द पेशेंट इन, किसी कारण से सक्सेस नहीं हुआ कहता है टेक द बॉडी आउट। पहले पेशेंट था, अभी बॉडी, फर्क क्या है? वो ऊर्जा नहीं रही जो इस शरीर को जीवंत करती है, वो है आत्मा। तो आत्मा की बात तो हम सब मानते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन जब परमात्मा की बात आती है तो इतने ज्यादा ओपिनियंस हैं कि आज की जनरेशन कंफ्यूज हो गई है, पता नहीं भगवान है भी या नहीं, है ना। माने या नहीं माने, किसका माने। एक बार एक साइंटिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट में डिबेट हुई। साइंटिस्ट का कहना था देयर इज नो गॉड, स्पिरिचुअलिस्ट का कहना था देयर इज गॉड। साइंटिस्ट की लॉजिक, रीजनिंग इतनी पावरफुल थी कि उसने किसी तरह से प्रूव कर दिया देयर इज नो गॉड। लेकिन वो प्रूव करने के लिए उसे इतना टाइम लगा, इतनी एनर्जी लगी, वो इतना थक गया कि उसकी स्पीच के एंड में उसने कहा, थैंक गॉड आई हैव प्रूव्ड दैट देयर इज नो गॉड। गहरी श्वास से एक्सहेल करके कहा, मतलब हमारी अंतरात्मा, अंतर्मन जरूर मानता है कि वो परम ऊर्जा है, है? इसलिए तो याद करते, इसलिए तो ऐसे टाइम पर उनको ही याद करते हैं। पहले तो हम अपनी ऊर्जा यूज करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टी आती है हम अपनी विचार अनुभव अपनी एनर्जी अपने हाथ पांव लगाते हैं कि हम शायद निकल आए इस बात से। इन द एंड क्या कहते हैं, हमने अपना बेस्ट कर लिया, अब उनके हाथ में है। साइंस भी मानती है, कोई पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स भी कहते हैं हमने अपना बेस्ट किया है। मतलब मुझे जितनी नॉलेज है मैंने अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दे दिया है इस पेशेंट को, अब जो है अब आप जो है ऊपर वाले के हाथ में है। अब आप बस दवा तो मैंने दे दी है, जो रिसर्च हुई है जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें बेस्ट दवा दे दी है, अब क्या चाहिए उसे, दुआ। यहां पर जहां आत्माओं की शक्ति काम नहीं करती है वहां पर उस परम शक्ति को याद किया जाता है, पुकारा जाता है, उस वक्त रियलाइज किया जाता है कि ऐसी परम ऊर्जा भी कुछ है हम इस ब्रह्मांड में, है ना, तभी हम उनको याद करते हैं। तो यहां पर हम पहले ही उनको जानकर पहचानकर उनको अपने जीवन में शामिल कर देते हैं। वैसे तो हम याद करते हैं लेकिन कब, जब जरूरत हो। लेकिन अगर हम पहले ही अपने आप को चार्ज कर लें तो डिस्चार्ज का मोड़ ही नहीं आएगा। डिस्चार्ज, डिप्रेस, डिसहार्टेड, डिजीज, ये सब होगा ही नहीं, है ना। तो आज हम जानेंगे उस परम स्रोत को। एक बात बताइए, कितने परमात्मा हैं? एक। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं तेरा भगवान मेरा भगवान, लड़ते क्यों हैं? परम आत्मा एक है, परम वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज वन, वो एक ही है। हाई कोर्ट बहुत सारी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट वन। हम सोल्स बहुत हैं, आत्माएं तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन सुप्रीम सोल एक है, वो है परमात्मा। एक बार अलग अलग स्थान से कुछ मुसाफिर निकले थे, आकर के मिले एक मुसाफिर खाने में। तुर्क स्थान से तुर्की, अरब स्थान से अरबी, ईरान से ईरानी, यूनान से यूनानी, चारों आकर के मिले एक मुसाफिर खाने में। अब चारों ही एक दूसरे की भाषा तो समझते नहीं थे, इशारों से बातचीत करना शुरू की, कैसे हैं, सफर कैसा रहा। इस इशारों की बातचीत में ये रियलाइज किया कि भूख लगी है, कुछ खाया जाए। तो एक ने क्या किया, अपना रुमाल बिछाया, अपने हिस्से का एक सिक्का डाला, तो बाकी सभी ने भी अपने अपने हिस्से का सिक्का डाला। और ये डिसाइड हुआ कि कोई एक व्यक्ति बाजार में जाकर कुछ अच्छा खाने को ले आए। अब तक तो ये सब कम्युनिकेशन ठीक चल रहा था इशारों का, लेकिन अब बात ये थी लाया क्या जाए। तुर्की कहता है आप ना उजमू लाना, अरबी कहते हैं नहीं आप ना मीठी मीठी मद जैसी एनब लाना, ईरानी कहते उजमू एनब ये कोई खाने की चीजें होती है क्या, आज सारा शहर अंगूर से भरा पड़ा है आप ना अंगूर ले आना, यूनानी कहते पैसे तो मेरे पास है मैं कोई अंगूर वंगूर नहीं लाऊंगा मैं तो स्टाफिलियन ले आऊंगा। चारों लड़ पड़े, बात मारामारी तक पहुंच गई, और इतने में उनका ध्यान गया एक और मुसाफिर आ रहा है अपने घोड़े पर ढेर सारी लदी अंगूर ला रहा है। तुरंत तुर्की कहते हैं ये देखो उजमू, अब कैसे लोगे उजमू नहीं खाते हैं, अरबी कहते हैं यही तो मीठी मीठी मद जैसी एनब है, ईरानी कहते हैं यही तो मैं बाजार से लाने वाला था। मतलब चीज एक थी, नाम अलग अलग होने के कारण आपस में लड़ पड़े। तो वो परम शक्ति, परम सत्ता, परम स्रोत, परम पिता, वो एक है। चाहे कोई खुदा कहे, भगवान कहे, अल्लाह कहे, मालिक कहे, गॉड कहे, जिस भी नाम से पुकारे, है ना, लेकिन वो है एक, वो है परम शक्ति, परम सत्ता, परम पिता, परम आत्मा। परम, वो परमात्मा जिनका सत्य परिचय आप प्राप्त करेंगे आज, और हम कहें आप माने नो, आप खुद जज करना, आप खुद रियलाइज करना, अनुभव करना, कौन हो सकते हैं परमात्मा। आज तक तो बहुत कुछ सुना, जाना, समझा, कौन हो सकते हैं वो भी हम देखें। अब तक कई मान्यताएं दुनिया में हैं उनके बारे में। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि परमात्मा साकारी है, साकारी माना जिनको बॉडी है ना, हमारी तरह जिनका साकारी स्वरूप है, उनको आज तक मानते आए, पूजते आए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं प्रकृति परमात्मा है, नेचर इज गॉड, भगवान। भगवान शब्द भी पांच अल्फाबेट से बना है, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ अग्नि और न नीर, माना जल वायु अग्नि आकाश धरती। ये पांच तत्वों से बना ये अक्षर है जो प्रचलित है और हम उसे मानते हैं। तो ऐसा भी ग्रुप है संसार में जो नेचर को गॉड कहता है। और तीसरा, वो लोग जो कहते हैं परमात्मा निराकार है। तीन मान्यताएं, इससे डिफरेंट कुछ नहीं, साकारी, प्रकृति या निराकार। अब इन तीनों में से कौन सा स्वरूप हो सकता है उनका, वो जानने के लिए पहले हम जान ले कि परमात्मा की क्वालिफिकेशंस क्या हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, उसके बिना वो एलिजिबल नहीं है बनने के। तो वैसे परमात्मा की क्वालिफिकेशंस माना उनके क्या ऐसे यूनिवर्सल एट्रीब्यूट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, किसे कहेंगे आप परमात्मा, वो हम आज जानेंगे। सबसे पहले परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च है, सबसे ऊंच है, उनसे ऊंचा कोई नहीं, मतलब वो हाईएस्ट ऑन हाई है। उनके कोई माता पिता नहीं, उनका कोई टीचर गुरु नहीं, वही सब कुछ है, ठीक है। दूसरा, जो सर्वधर्म माननीय हो, माना जिनको सब धर्म मानते हो, ऐसा कोई धर्म ना है जो उनको न मानता हो, वो है परमात्मा, है ना। कोई ये ना कहे कि ये नहीं हो सकते हैं, जिनको सब धर्म मानते हो वही परमात्मा हो सकते, ये दूसरी क्वालिफिकेशन है। तीसरा, जो संसार की सापेक्ष बातों से न्यारे हैं, माना सर्वोपरि है, संसार की सर्व डुअलिटी से परे हैं, जैसे कि पाप पुण्य, लाभ हानि, निंदा स्तुति, मान अपमान, कर्म फल, जन्म मरण, ये जो भी डुअलिटीज हैं जिसके साइकिल में हम मनुष्य आते हैं, वो नहीं आते, वो है सर्वोपरि, इन सब बातों से परे। और चौथा, वो सर्वज्ञ हैं, माना सब कुछ जानने वाले। इसलिए वैसे भी उनको जानी जाननहार कहते हैं। रोजाना जिंदगी में हम भी जब कुछ नहीं जानते हैं तो हम कहते हैं गॉड नोस, मुझे मत पूछो, है ना, ऊपर वाला जाने, ऐसा कहते हैं, हमको नहीं पता। माना वो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो चौथी क्वालिफिकेशन है वो सर्वज्ञ हैं, और पांचवी वो दाता है, देने वाले, सर्वशक्तिमान। मनुष्यों को फिर भी स्वयं के लिए पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बाद जो बचेगा उसमें से दान कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा जिनके लिए कहते हैं देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, सब कुछ देते हैं, कल्याणकारी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिनके लिए कहते हैं प्रचंड शक्ति। तो ये पांच क्वालिफिकेशंस जिसमें होगी वो परमात्मा हो सकता है, ठीक है। अब ये पांच बातें आप अप्लाई करें उस स्वरूप को जो कहते हैं परमात्मा साकारी है। जो भी साकारी है, जिनको भी बॉडी है, वो सर्वोच्च हो सकते हैं। आज तक हम जैसे श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, कोई क्राइस्ट जी, गुरु नानक जी, मोहम्मद जी, जो भी साकारी स्वरूप हैं, जिनको भी हम याद करते हैं, मानते हैं, पुकारते हैं, वो स्वयं बॉडी लिए हुए हैं, उनके खुद के माता पिता हैं, टीचर गुरु हैं, जिन्होंने उनको पालना दी, शिक्षा दी, है ना। तो उनसे ऊंच तो वह हो जाते हैं जिन्होंने उनको ये सब सिखाया, तो वो सर्वोच्च नहीं है। दूसरा, वो सापेक्ष बातों से न्यारे भी नहीं है, क्योंकि बॉडी है तो जन्म है तो छोड़ना भी है शरीर, कर्म है तो फल भी है, तो उस डुअलिटीज में आ जाते हैं। और तीसरी बात, वो सर्वधर्म माननीय हो, तो क्या सब धर्म मानते हैं उनको? क्राइस्ट जी को क्रिश्चियंस मानेंगे, हिंदूज नहीं, बौद्ध जी को मुस्लिम्स मानेंगे, क्रिश्चियंस नहीं, है ना। और जिनको भी बॉडी है वो सर्वज्ञ भी नहीं हो सकते, वो सब कुछ जान भी नहीं सकते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो पास्ट बर्थ को नहीं जानती और फ्यूचर बर्थ को भी नहीं जानती, तीनों कालों को नहीं जान सकती है। अगर सचमुच हम सब कुछ जान पाए तो ये दुनिया टॉपसी टर्वी हो जाएगी, है ना, सब अपने पिछले रिश्तों के पास जाना चाहेंगे। तो ये नियम है, जिसने भी बॉडी ली है वो सब कुछ नहीं जान सकते आगे पीछे का, तो वो सर्वज्ञ भी नहीं हुए और वो दाता भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पहले खुद के लिए सब कुछ चाहिए। तो ये पांच बातों के आधार पे ये तो हम समझ लिए कि साकारी परमात्मा नहीं हो सकते। तो फिर आज तक हम उनको क्यों पूजते आए, क्यों मानते आए, क्यों झुकते आए? क्योंकि वो जैसे श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, श्री नारायण जी, श्री विष्णु जी, ये सब हैं देवता। कौन है? देवता, देव आत्मा, बट नॉट परमात्मा। आज हम बात कर रहे हैं परमात्मा के बारे में। गुरु नानक जी, क्राइस्ट जी, प्रोफेट मोहम्मद जी, महावीर जी, ये सब हैं धर्मात्मा बट नॉट परमात्मा। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? परमात्मा के बारे में। गांधी जी थे महात्मा बट नॉट परमात्मा। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? परमात्मा के बारे में। कोई मनुष्य है वो पुण्य आत्मा हो सकते हैं बट नॉट परमात्मा। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? परमात्मा। तो परमात्मा कौन हो सकते हैं? साकारी तो नहीं हो सकते, बॉडी वाले तो नहीं हो सकते, वो महात्मा हो सकते, धर्मात्मा हो सकते, देवात्मा हो सकते, पुण्यात्मा हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा बियॉन्ड बॉडी। इसलिए उनको स्त्रीलिंग नहीं कहते, पुल्लिंग नहीं कहते, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। दूसरा ओपिनियन जो लोग कहते हैं, परमात्मा प्रकृति है, नेचर इज गॉड। लेकिन आप जानते हैं परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज अनचेंजेबल, परमात्मा अपरिवर्तनीय है। लेकिन नेचर तो बदलती रहती है, साल में कितने सीजन्स आते हैं जाते हैं, है ना, नेचर बदलती है। फिर कहते हैं परमात्मा दुख हरता सुख करता है, लेकिन नेचर दुख भी देती है, बाढ़ भूकंप सूखा इन स्वरूपों में। तो इससे प्रूव होता है नेचर भी गॉड नहीं है। तीन ओपिनियंस में से दो तो नहीं हो सकते, साकारी भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, तो एक ही बचा, क्या परमात्मा निराकार है? जी हां। लेकिन ये प्रूव करने से पहले हम आपको निराकार शब्द का अर्थ बताना चाहेंगे। लिटरली ये शब्द सुन के आपके मन में आता होगा निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं, है ना, ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। निराकार शब्द एक सापेक्ष शब्द है, रिलेटिव टर्म है, इन कंपैरिजन है। मतलब इस हॉल को मैं बड़े हॉल से कंपेयर करूं तो इसको छोटा कहेंगे, इस छोटे हॉल को किसी और कमरे से कंपेयर करूं मैं कहूंगी ये बड़ा है, है ना। इन कंपैरिजन कभी इसी हॉल को हम बड़ा कहते हैं, कभी इसी को हम छोटा कहते हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये रिलेटिव है, इन कंपैरिजन होता है, पतला मोटा लंबा छोटा काला कोरा, ये सब ना कंपैरिजन है, रिलेटिव टर्म्स हैं। तो परमात्मा निराकार है, इसका मतलब वो हमारी तरह साकारी आकार नहीं है, पर उनका आकार है, आकार तो है। आज दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है जिसका कोई नाम रूप रंग आकार ना हो, होता है ऐसा? कोई व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है, आप उसको पूछो भाई क्या ढूंढ रहे हो, उसका कोई नाम नहीं है। अच्छा भाई दिखती कैसी है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ हो गया इसको, ऐसे तो कोई चीज संसार में है ही नहीं, स्थूल चीज भी ऐसी नहीं है। तो वो परम शक्ति, परम सत्ता, परम पिता, परमात्मा, जिसे ढूंढने के लिए राजाओं ने राजघराने छोड़ दिए, साधु संतों ने घर बार छोड़कर जंगलों में हजारों वर्ष तपस्या की, तो क्या उसे, जिसका कोई नाम रूप रंग भी नहीं है, ऐसे ही नहीं, उनका नाम रूप रंग आकार सब कुछ है, पर हमारी तरह साकारी आकार नहीं है, बॉडीली बीइंग नहीं है। तो कंपेयर टू साकारी वो निराकार है, और निराकार मतलब न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, ज्योतिर्लिंगम, लिंग माना सिंबल, सिंबल ऑफ लाइट, तो उन्हें कहते हैं लाइट, ज्योति स्वरूप। वैसे तो ये जो ज्योति वर्ड हम यूज कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत छोटा है, लाइट वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन हम मनुष्यों की भाषा में वोकैबुलरी में यही शब्द है जो मैं कम्युनिकेट करके आपको बता सकती हूं, और इसलिए हम ज्योति लाइट ये वर्ड यूज कर रहे हैं। बट एक्चुअली वो प्रचंड लाइट है, प्रचंड पावर है, आप सोच नहीं सके, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी देते हैं, ऐसा पावर हाउस सोच सकते हैं, जिसके लिए गीता में कहा है हजारों सूर्यों से तेजोमय हूं मैं। एक सूर्य यू कैन, आप देख रहे हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय, मतलब कितनी लाइट, कितनी पावर, जो पूरे ब्रह्मांड माना सारे प्लैनेट्स में उनकी एनर्जी जा रही है। और इसलिए कुछ लोग फिर ये भी मान लेते हैं कि कण कण में वो है, लेकिन उनकी एनर्जी फ्लो हो रही है, पर वो नहीं है। माना कण कण ही भगवान नहीं हो सकता, वो सोर्स है। आज एक चार्जर है, आप पावर हाउस से कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, प्रॉपर मोबाइल में पिन डलती है, थोड़ी भी लूज हो तो भी चार्जिंग नहीं होगी। तो सिस्टम है ना, उसमें कितना वॉट्स का फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी वो भी मैटर करता है, तब जाके एक इंस्ट्रूमेंट चार्ज होता है ना। तो ये हम मानव, सिर्फ मैं एक ह्यूमन बीइंग के चार्जिंग की बात नहीं है, पूरे प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी फ्लो उस परमात्मा का है, उस सोर्स का है, जिसके लिए हम इशारा करते हैं उनको याद करो। अब उनसे कनेक्ट हो जाओ, एनर्जी पालो, तब आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होगी। वो है परमात्मा, जिनका रूप साधारण शब्दों में हम रोजाना जिंदगी में तो कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, और इसलिए आप यहां पर देखते हैं पॉइंट ऑफ लाइट है ना। अब वो पॉइंट ऑफ लाइट परमपिता परमात्मा आप देखेंगे वो सर्वधर्म माननीय है, जिनको सब धर्म मानते हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं जो उनको ना मानता हो, उस ज्योति स्वरूप को ना मानता हो। ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा, जिसे भारत में चारों ओर लिंग के रूप में पूजा जाता है, आपने देखा है ज्योतिर्लिंग, उसमें एक रेड डॉट होता है, 3 white lines होती हैं, वो रेड डॉट जो है वो ज्योति बिंदु परमात्मा का प्रतीक है, और जो 3 white lines हैं वो उनके कर्तव्य का प्रतीक है। दीपक, दीपक की लौ देखी है, ओवल शेप होती है, ज्योति स्वरूप। तो दीपक हिंदूज जलाते हैं और वो लिंग फॉर्म में उस ज्योति स्वरूप में रेड डॉट लगाकर इस इमेज को ज्योतिर्लिंग कहते हैं और भारत में चारों ओर पूजते हैं। नॉर्थ में अमरनाथ मंदिर है जहां बर्फ का लिंग बनता है, साउथ में रामेश्वरम टेम्पल है जहां मान्यता है श्री राम जी ने उनकी स्थापना की, पूजा की, आराधना की, और तब से वहां मंदिर बना रामेश्वरम, जिसका मतलब है राम का भी कोई ईश्वर है, उन्होंने भी किसी को आराधना की। गोपेश्वरम, गोप का भी कोई ईश्वर है। ईस्ट काशी बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, वेस्ट सौराष्ट्र वेरावल में सोमनाथ मंदिर है। ना सिर्फ भारत में लेकिन भारत से बाहर नेपाल में आप देखें तो पशुपतिनाथ टेम्पल है, जहां सब जगह उस ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को लिंग के रूप में पूजा जाता है उस फॉर्म में। ना सिर्फ हिंदूज लेकिन आप देखते हैं जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन हज करने जाते हैं मक्का मदीना, वहां पे ओवल शेप का एक ब्लैक स्टोन है जो कवर्ड है, उसकी उस ब्लैक स्टोन को वो चूमते हैं, उसकी परिक्रमा लेते हैं और समझते हमारे सारे पाप धुल गए। जिस ब्लैक स्टोन को वो संग ए अस्वत कहते हैं, ये पर्शियन और अरबिक वर्ड से बना है दो, इट मींस ब्लैक स्टोन, काला पत्थर, और जिस जगह पे रखा है वो खाना एक काबा कहते हैं, मीन्स पवित्र प्लेस, होली प्लेस। और वैसे भी आपने रोजाना जिंदगी में सुना होगा उन्हें कहते हुए अल्लाह नूर है, नूर, नूर माना लाइट, जाने अनजाने ओवल शेप्ड वो लाइट ही मानते हैं। आप देखेंगे क्राइस्ट जी, उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, इशारा कहां किया, ऊपर ऐसा किया, आई एम गॉड, नहीं आई एम द सन ऑफ गॉड, बट हु इज गॉड, गॉड इज लाइट. उन्होंने भी क्या कहा, लाइट है. और इसलिए चर्च में आप देखेंगे एक कैंडल स्टैंड होता है, उसे हनुका कहते हैं. उसमें बीच में एक सेंटर में हाइटेड स्टैंड होता है, उसमें एक कैंडल लगाते हैं और बाकी सब छोटी छोटी कैंडल्स जो बाजू में हैं उसका लेवल वो एक कैंडल से थोड़ा नीचे होता है, एक बड़ी बाकी सब छोटी छोटी. वो बड़ी कैंडल परम ज्योति परमात्मा का प्रतीक है और वो छोटी कैंडल हम आत्म ज्योति आत्माओं का प्रतीक है. वो भी कहते हैं गॉड इज लाइट. गुरु नानक जी ने कहा एक ओमकार, एक परमात्मा निराकार है. उन्होंने भी इशारा किस ओर किया, ऊपर की ओर, खुद की ओर नहीं. हम तो उनका मैसेज दे रहे हैं, पर वो कौन है? एक वही है जो हम सबका स्रोत है. हम जीवन ऊर्जा आत्मा का ऊर्जा स्रोत है. तो सबने इशारा उनकी ओर किया, लेकिन वो सटल हैं, ज्योति हैं, उनको इन आंखों से नहीं देख सकते. तो लोगों ने, जिन्होंने उनका मैसेज दिया, उनको ही मानने लगे कि आपका अच्छा कनेक्शन है ना, आप ही मुझे दे दो थोड़ी एनर्जी. इसलिए जाते हैं ना रिलीजियस पीपल के पास, स्पिरिचुअल पीपल के पास. आपका उनसे अच्छा कनेक्शन है, मेरा तो कनेक्शन हो नहीं पा रहा, इसलिए आप मुझे दे दो, आप मेरे ऊपर क्या करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, दया करो. उनसे ही कह देते हैं. पर कनेक्ट किससे होना है? आपके पास कोई मैसेंजर आए, कोई कुरियर आए, तो मैसेज भेजने वाले का है या कुरियर वाले का है? लेटर भेजने वाले का है ना. तो उन्होंने तो मैसेज दिया, अच्छी प्योर पुण्य आत्माएं देव आत्माओं के माध्यम से हमें अच्छा मैसेज भेजा. तो हमें कनेक्ट किससे होना है? परम ऊर्जा परमात्मा से, जिन्हें सब धर्म मानते हैं. पारसीज बिलीव फायर इज गॉड. फायर अगेन लाइट. इजिप्शियंस बिलीव सन इज गॉड. सन अगेन इज लाइट. तो सभी धर्म इस दुनिया में, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, वो सब मिलाकर के इसी ओर इशारा करते हैं कि वो ज्योति है, वो लाइट है. चाहे वो लाइट दिए की है, चाहे वो लाइट कैंडल की है, चाहे वो फायर की है, चाहे वो सन की है, लेकिन सबने रोशनी की ओर इशारा किया. वो क्या है? प्रचंड ऊर्जा शक्ति जिसे कहें, और प्रचंड लाइट प्रकाश. तो क्लियर, परमात्मा का रूप क्या है? अब किसे याद करेंगे, किससे कनेक्ट होंगे? परम स्रोत से कनेक्ट होंगे, है ना. और लास्ट में ले रहे, ये उनका रूप क्लियर हुआ. अब उनका नाम क्या है? ऐसे तो उनको अनेक नामों से पुकारते हैं, अलग अलग उनके कर्तव्य के आधार पे, अलग अलग गुणों के आधार पे. उनके कई गुणवाचक नाम हैं, कर्तव्यवाचक नाम हैं, लेकिन एक परमानेंट नाम भी है. जैसे हमारा अलग अलग गुणों और व्यवहार के कारण बचपन से कई पेट नेम हो जाते हैं, है ना. अलग अलग रिश्तेदार प्यार से जो उनके मन में आता है अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन परमानेंट एक आईडी नेम वो एक ही होता है, राइट. तो परमात्मा के अनेक गुणों और कर्तव्य के आधार पे अनेक नाम हैं. हम पापकटेश्वर कहते क्योंकि डिस्ट्रॉयर ऑफ सिंस है, मुक्तेश्वर कहते हैं क्योंकि लॉर्ड ऑफ लिबरेशन है, रामेश्वरम लॉर्ड ऑफ द रामा है, लॉर्ड ऑफ द कृष्णा है तो गोपेश्वरम कह दिया, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है तो विश्वनाथ नाम कर दिया, लॉर्ड ऑफ नेक्टर है तो सोमनाथ नाम रख दिया, बबूलनाथ नाम रख दिया, कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, अनेक नामों से पुकारते हैं। लेकिन उनका एक ऐसा नाम जो परमानेंट है, उनका एक ऐसा नाम जो एटर्नल है, उनका एक ऐसा नाम जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन देता है, उनका पूरा परिचय हम सबको बताता है, वो नाम है शिव। लेकिन जैसे ही आपने ये शब्द सुना शिव, आप प्लीज उसको हिंदू रिलीजन के साथ कनेक्ट नहीं करना। ये सिर्फ हिंदू रिलीजन की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल नाम है। ओके? ये वो नाम है जो सभी मानते हैं, ये यूनिवर्सल मीनिंग है। शिव वर्ड मतलब, शिव का जो मतलब है, सबसे पहले शिव का मतलब है जीरो, लिटरली जीरो। आज से पहले जब मुनीम जी अकाउंट्स लिखते थे ना, तो वन के आगे कभी जीरो नहीं लिखते थे, वन के आगे शिव लिखते थे। हंड्रेड लिखना है ना, वन शिव शिव। थाउजेंड लिखना है, तीन बार शिव। तो मतलब शिव मतलब लिटरली जीरो नंबर। दूसरा, शिव माना पॉइंट, पॉइंट उनका रूप है, जीरो उनकी क्वालिफिकेशन है। जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, पॉजिटिविटी भी नहीं है, नेगेटिविटी भी नहीं है, तो संसार की ड्यूअलिटी से परे है, सर्वोपरि। सर्वोपरि माना जीरो, न्यूट्रल। पॉइंट माना उनका रूप है, ज्योति बिंदु। तीसरा, शिव का मतलब है कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करते हैं, ये उनका कर्तव्य है। चौथा, शिव मीन्स प्योर, वो एवर प्योर है, वो कभी भी प्योर इम्प्योर के साइकिल में नहीं आते, वो एवर प्योर है, हमेशा प्योर है, इसलिए उनको सदा शिव कहते हैं। वो सदा ही प्योर है, वो सदा ही कल्याणकारी है, वो प्योर है। और पांचवा, शिव का यूनिवर्सल मीनिंग है सीड। सीड माना बीज, बीज आप जानते हैं ना, बीज पूरे वृक्ष का क्रिएटर होता है, कितना टाइनी होता है, छोटा सा, लेकिन पूरे वृक्ष का रचयिता होता है। तो परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु, लेकिन पूरे यूनिवर्स का कौन है, क्रिएटर। तो शिव का मतलब हुआ क्रिएटर, सीड। शिव का मतलब हुआ प्योर। शिव का मतलब हुआ कल्याणकारी, सबका भला करने वाले। शिव का मतलब है पॉइंट, लाइट, ज्योति, उनका स्वरूप है। और शिव का मतलब है जीरो, क्योंकि वो न्यूट्रल है, संसार की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में नहीं आते। ये यूनिवर्सल मीनिंग है शिव शब्द का। अब संसार में जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने परम पिता परमात्मा को जिस भी नाम से पुकारते होंगे, अपनी कोई भी भाषा में पुकारते होंगे, उस नाम का मतलब अगर आप निकालेंगे, उस नाम का मतलब निकालेंगे, वो इन्हीं पांच मीनिंग्स में से होगा। या तो मतलब पॉइंट होगा, या तो जीरो होगा न्यूट्रल, या तो ज्योति बिंदु होगा, या तो लाइट होगा, या तो प्योर होगा, या तो कल्याणकारी होगा, या तो बीज होगा क्रिएटर। अब कोई भी भाषा में कोई भी नाम से वो पुकारते हो, उसका मतलब इन्हीं पांच मतलबों में से एक होगा। इसलिए ये यूनिवर्सल नेम है शिव, और हम उनको शिव भगवान नहीं कहते, क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बहुत दूरी का हो जाता है ना, वो बहुत ऊंच हम बहुत नीच, वो मालिक है हम दास हैं। हम सिर्फ शिव भी नहीं कहते क्योंकि रेस्पेक्टफुल नहीं है, लेकिन वो हमारे पिता हैं, वो हमारे रचयिता हैं, इसलिए हम उनको शिव बाबा कहते हैं। बाबा इज द लविंग वर्ड फॉर फादर, पिता। तो पिता और पुत्र का रिश्ता जिसमें अधिकार है, जिसमें वर्षा है, जिसमें पालना है, जिसमें प्राप्ति है, वो वाला शब्द कहते हैं बाबा, शिव बाबा। तो क्लियर, नाम भी क्लियर हुआ। परमात्मा का जैसा नाम है ना वैसा ही काम है, हमारी तरह नहीं मनुष्यों की तरह। अब किसी का नाम होगा शांति, लेकिन पॉसिबल है वो अशांत रहते हो, है ना, हो सकता है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था छज्जू। वेरी फनी नेम, सुन के हंसी आएगी। लोग बहुत हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। घर वालों ने कहा हमको अच्छा नहीं लगता है लोग मजाक उड़ाते, आपने अपना नाम बदल दो। एक दिन बहुत जिद किया घर वालों ने, तो वो निकल पड़ा नाम ढूंढने के लिए। रास्ते में गया, एक लेडी धान कूट रही थी, पूछा बहन जी आपका नाम क्या है? कहा लक्ष्मी। उसे अच्छा नहीं लगा, लक्ष्मी माना धन की देवी और ये इतनी गरीबी में है धान कूट रही है। थोड़ा और आगे गया, एक बेगर मिला, पूछा भाई साहब आपका नाम क्या? कहा धनपत। वो भी अच्छा नहीं लगा। और आगे गया, एक भीड़ अर्थी को लेके जा रही थी, सोचा ये वैसे ही ये व्यक्ति संसार से चला गया है, इसका नाम अच्छा होगा ना, खुद पे रख लूंगा। तो भीड़ में से बुलाकर एक व्यक्ति को पूछा भाई साहब इनका नाम क्या था? तो कहा अमरनाथ। वो भी अच्छा नहीं लगा। थका हारा घर आया, घर वालों ने पूछा कोई नाम पसंद आया? तो कहा लक्ष्मी कूटे धान, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी चल बसे, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। हमारा मनुष्यों का हो सकता है कि जैसा नाम है वैसा काम ना हो, लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं। इसलिए उनके लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचते ऊंच भगवान, कहते हैं ना ऐसा। तो सबसे ऊंचे हैं, उनका रहने का धाम भी ऊंचा है। कहाँ रहते हैं? परम धाम। कल परिचय मिला ना, हम आत्माएं कहाँ रहती हैं? परम धाम। जो पिता का घर सो बच्चों का घर, जो बच्चों का घर सो पिता का घर, है ना। हम सब कहाँ रहते? परम धाम। तो परमात्मा परम शक्ति, वो रहते भी परम धाम में है, हाईएस्ट ऑन हाई, जिसे शास्त्रों में कहते कि दसवें द्वार, माने ये सारे स्फीयर्स हेमिस्फीयर्स पास करके, एटमॉस्फियर पार करके, तीन लोक भी पार करके, दसवें द्वार आप उनसे मिलन मना सकते हैं। वहां वो सोर्स है, वहां से उनकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जाती है, सारी प्रकृति में, मानव में, प्लैनेट्स सब में। तो परमात्मा रहते कहां हैं? परम धाम। उनका रूप क्या है? ज्योति बिंदु। नाम क्या है? शिव बाबा। अब उनके परिचय में एक और बात है, उनके गुण क्या है। संत कबीरदास ने कहा है सारे धरती को दवात बनाओ इंक बॉटल, सारे सागर को स्याही बनाओ इंक, सारे जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ और आकाश को कागज बनाओ। साक्षात सरस्वती देवी बैठकर भी उनकी महिमा लिखना चाहे ना तो कम होगी, अथाह उनकी महिमा है। जीवन बीत जाए महिमा गाते गाते, और इसलिए उनके गुणों को सागर से कंपेयर करते हैं। सागर अनंत है ना, आप शांति के सागर हैं, आप प्रेम के सागर हैं, आप सुख के सागर हैं, आप आनंद के सागर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप नवयुग रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, कल्याणकारी हैं, एवर प्योर हैं, दुखहर्ता सुखकर्ता हैं, पापों को नाश करते हैं, मुक्तिदाता हैं, जितना कहें अनंत है, है ना, अनंत है। तो ये है उनके गुण। इसलिए कहते वो रूप में बिंदु हैं लेकिन गुणों में सिंधु हैं। सिंधु माना सागर। नाम जान लिया, रूप भी जाना, और रहने का स्थान, उनका घर का एड्रेस, और उनके गुण। अब एक लास्ट बात जाननी है, वो करते क्या है, है ना। अब हम पूछे आपके पिता क्या करते हैं या क्या करते थे, आप तुरंत उत्तर दे सकते हो। तो आत्मा के पिता क्या करते हैं वो पता है आपको?
कई लोग समझते हैं कि पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, सूरज भी भगवान के कहने से उगता है, बारिश भी उनके कहने से आती, नहीं, ये सब प्रकृति नियम है। दुख सुख परमात्मा देते नहीं, वो हमें कर्मों का फल है। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ तीन कर्तव्य करते हैं और वो है नई दुनिया की स्थापना, दूसरा नई दुनिया की पालना, और जब समय बीत जाता है समय अनुसार वो दुनिया पुरानी हो जाती है तो उस पुरानी दुनिया का रीडेवलपमेंट, माना संहार करके फिर नया क्रिएट करना। तो उनके तीन कर्तव्य, स्थापना, पालना और परिवर्तन, जिसे कहते हैं विनाश। ये तीन कर्तव्य परमात्मा करते, इसलिए उनको त्रिमूर्ति गॉड कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। वो तीन कर्तव्य करते और वो ये तीन सूक्ष्म देवताओं से कराते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। इसलिए शिव का मतलब शंकर भी नहीं है, शिव जी और शंकर जी अलग हैं। शंकर जी को देह है, बॉडी है, शिव जी को बॉडी नहीं है। शिव लिंग अलग है, उनको शंकर लिंग नहीं कहते, शंकर जी बॉडी है। वो हमेशा तपस्या में बैठा दिखाते हैं, माना उनसे भी ऊंचा कोई है जिनको वो याद कर रहे हैं। शंकर जी को पुत्र कहते हैं, शिव पिता है। शिव जी को कल्याणकारी कहते हैं, उनके शिव का मीनिंग ही कल्याणकारी है, और शंकर जी के लिए कहते हैं तीसरी आंख खोली तो संहार हो गया। तो वो साकारी है, वो निराकार है। आप श्लोक भी पढ़ते हैं, ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः नमः नमः। शंकर जी के लिए क्या कहा, देवताय नमः, और शिव जी के लिए क्या कहा, परमात्माय नमः नमः नमः, थ्री टाइम्स, क्योंकि वो त्रिमूर्ति हैं, वो तीन कर्तव्य करते, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। क्लियर, परमात्मा का संपूर्ण परिचय मिला। तो क्या करेंगे, उस अलौकिक ईश्वरीय नशा हो, हम किसकी संतान हैं, किससे हमारा रिश्ता है, किससे कनेक्शन है आपका। हाँ, दुनिया में एक बिजनेसमैन का बच्चा भी हो तो उसे भी नशा होता है, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं। एक बच्चा खुद इतना लीन हो लेकिन उसके पिता पहलवान हो तो क्या कहेंगे, मुझे कुछ नहीं करना, डैडी से कह दूंगा, है ना, नशा होता है। किसी ऐसे बड़ी पोस्ट पोजीशन वाले से परिचय हो तो दूसरे भी आपसे कहेंगे आप मेरा काम करवा दो ना, आप तो उनको जानते हो, है ना। तो सबसे हाईएस्ट ऑन हाई पोस्ट किसकी है, परमात्मा की। उनको आपने जान लिया तो अब आपका कनेक्शन हो गया अच्छा, तो अपने आप को लकी समझते हैं तो क्लैप करें कि आज आपने अपने पिता परमात्मा को पहचाना, जाना। अब रिश्ता कैसे रखेंगे, वो भी हम सिखाएं कि अब रख सकते हैं। संबंध कौन सा है ये तो पता चला, लेकिन उस संबंध में ना उनको उतना ही कैसे सहज याद करें, वो है राजयोग मेडिटेशन, जिसे याद कहते हैं। ध्यान लगाना तो है लेकिन याद, याद करना कितना आसान है, मुश्किल है। एक माँ को बच्चे को याद करना तो क्या एक जगह पे बैठकर माला फेरती है, उसके नाम की जाप करती है। एक पत्नी को पति को याद करना है तो माला फेरती है, जाप करना, मंत्र करना, यज्ञ करना, नो, सो इजी टू रिमेम्बर। तो वो परमपिता परमात्मा को याद कैसे करें, उसका जो सेशन है वो कल रहेगा, लेकिन आज जो परमपिता परमात्मा का परिचय मिला है उस पे बेस्ड एक क्रिएटिव मेडिटेशन कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी राजयोगिनी बहन विष्णु बहन जी को, करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। तो कैसे परमपिता परमात्मा को याद करने की एक बहुत अच्छी विधि, यूनिक विधि बताने के लिए विष्णु बहन जी हमारे साथ हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने पिता के विषय में आपने सब सुना, परमात्मा क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसका रहना, उनकी हर बात हमारी सिस्टर से आपने बहुत अच्छे अच्छे समझ से समझाया उन्होंने, और आपने भी सभी ने समझ लिया। समझ लिया तो हाथ ऊपर ऐसा करें, सबने समझ लिया। तो परमात्मा को अभी इजी रीति से कैसे हम याद में रहें, तो हम हमेशा मेडिटेशन में ये सिखाते हैं कि ऐसे तो एक तो साधना करके बैठे रहते मौन में, एकांत में से बैठते हैं, परमात्मा की ध्यान में बैठते हैं, जो ऐसा उनको ऐसा संकल्प रहता है कि हम उसके साथ एकदम जुड़ जाए, ओ और हम बस, और कोई याद ना आए, एक ये याद रहता है। दूसरा, भजन कीर्तन करते हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ रहे। फिर माताएं क्या करती है, रोज रोज सवेरे सवेरे उठ के घंट बजाते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को याद कर सके, हर परिवार के बच्चे याद कर सके। तो सुबह से लेके रात्रि तक कुछ ना कुछ हम ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं जो परमात्मा को याद करे। चाहे ऑफिस में भी जाएंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे, परमात्मा की याद के बाद सेवा चालू करें। हर जगह पर उसको याद करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ राजयोग जो सिखाया जाता है, ये मन का परमात्मा के साथ कैसे हम जुड़े रहे। मन से हम जब जुड़ जाते हैं तो जैसे बहन जी ने कहा ना आपको, कि याद करने के लिए कुछ ऐसी करना नहीं पड़ता है, वो सदा स्थायी रहता है। तो सदा स्थायी रहने के लिए मन को पहले समझना पड़े। तो आत्मा की ज्ञान तो आपको सबको मिला, सबको मिला आत्मा का ज्ञान। आत्मा में कितनी शक्ति है, तीन शक्तियों का ज्ञान मिला। क्या है तीन शक्ति, किसको पता है? पता है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीन बातें बताएं आपको, हाँ या ना? हाँ जी, तो ये तीन बातें जो है ना, ये मेन गहराई से अगर हम समझ जाते हैं तो उस परमात्मा को याद करना एकदम इजी हो जाता है। क्योंकि मन हमारा चंचल है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता है, उसको ही स्थिर करना है। मन जब ही हमारा स्थिर होगा तो बुद्धि हमारा डिसीजन बराबर दे सकेगा कि अब यही करना, यहां बैठे हो कुछ प्राप्त करो, यहां आए हो यहां वहां भटकने के लिए नहीं जाना है, आपको कुछ प्राप्ति करके जाना है। तो संस्कार, फिर वो संस्कार डालता है। तो जब बुद्धि डिसीजन देता है कि अब यही करना है, तो हमारे अंदर संस्कार पड़ता है। तो ये जो तीन शक्तियां, अभी कलयुग के अंत आ चुका है और लास्ट स्टेज के कारण हमारा सब कुछ हलचल में है, जो चाहे वो करने की दिल होता है, आज ये करे आज वो करे, हर जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो परमात्मा आके कहते हैं, जब मुझे याद करोगे तो ये तीनों जो है ना पावर, आपके अंदर ये पावर्स भर जाएगी और उससे आप उसको याद में सहजता आएगी। तो हम मूविंग मेडिटेशन सिखाते हैं। मूविंग मेडिटेशन माना, जो व्यक्ति कंटिन्यू स्थिर होकर नहीं बैठ सकता है, तो मुद्राओं के द्वारा हम उनको ले जाते हैं परमात्मा की ओर, माना संकल्प शक्ति से। जैसे इन आंखों से आप परमात्मा को देखा है, किसी ने भी देखा है, हवा को देखा है, हाँ या ना? हाथ करो, हाँ या ना? नहीं देखा है। तो हम आत्मा को भी नहीं देखा है, परमात्मा को भी नहीं देखा है, और ये हवा प्रकृति, हवा को देखा है किसी ने? महसूस करते हैं कि ऐसी हवा जा रहा है। तो ये परमात्मा को देखा नहीं है पर उसको महसूस करना है। आत्मा को देखा नहीं है पर फिर हमारे शरीर के अंदर है ना, हम सब कुछ करते हैं। तो आत्मा जब एक पावरफुल बन जाती है तो जो चाहे वो सब कुछ कर सकती है। तो आत्मा के अंदर जो शक्तियों का प्रवाह आना होता है तो कहते हैं चार्ज करना पड़े, तो उसके लिए कनेक्शन जोड़ना पड़े। अभी हम मोबाइल भी यूज करते हैं, जोड़ना पड़ता है ना लाइट के कनेक्शन के साथ। जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक उसका मोबाइल, अगर चार्ज खत्म हुआ तो मोबाइल कुछ काम आएगा, भले कितने भी रुपए का हो पर वो काम नहीं आता है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर, मन के अंदर अगर ये संकल्प रहे कि मुझे परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा से शक्तियां लेना है, तो जब शक्तियां लेंगे तो हमारे अंदर जो है पावरफुल, फिर हम जो सोचेंगे जो करेंगे वो सब हम इजी से कर सकते। तो अभी हम चलेंगे उस परमात्मा की अनुभूति करने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं और अपने हाथों को हिलाएं, हल्के हो जाएं, क्योंकि ये हल्का होना है। जीवन के अंदर कुछ प्राप्ति करना है तो ये हल्का लाइट, लाइट प्रकाश, आपको बताया ना परमात्मा लाइट है, तो परमात्मा के पास जाना है तो हम लाइट होकर उड़ उड़ के जाएंगे। तो इसके लिए लाइट, और अब ऐसे ऐसे करो, वेरी गुड। तो ऐसे लाइट स्वरूप में हम उड़ते उड़ते परमात्मा को पहचानेंगे। अभी आप बैठ जाइए और अपने लिए जोर से तालियां बजाएं 3 बार, क्योंकि खुशी में आना है। परमात्मा मिलन में खुशी होती है, प्यार होता है, स्नेह होता है। परमात्मा से मिलने के लिए माथा नहीं मारना होता है, जैसे एक पांव में खड़े रहो वरदान प्राप्त करने के लिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को तो एकदम प्यार से, दिल से उसको याद करना है, नहीं तो क्या होता है हम भारी हो जाते हैं। परमात्मा की याद में जब लाइट, लाल लाइट होती है तो सभी एकदम भारी हो जाते हैं कि कैसे हम जाए, कैसे याद करें। तो परमात्मा एकदम लाइट, हम भी लाइट, और उसको याद करना प्यार से। तो अभी हम ऐसा मुद्रा के इसमें रहेंगे सब याद, हम आपको एक्टिविटी करके दिखाएंगे एक गीत पर, वो गीत बजेगा यहाँ पर, हम बताया है उनको गीत बताएंगे, वो गीत बजेगा उस लाल लाइट में, आप सभी को उसको अनुभव करेंगे। अनुभव करने के लिए आपको पहले मन को एकाग्रता करना है कि मुझे कुछ प्राप्ति करना है, उसके लिए हमारी इशारों को कैचिंग करना है आपको, हम जैसे जैसे आपको कराए आपको मुद्रा का ज्ञान करना। तो अभी सभी ऐसा मुद्रे में बैठे सभी, और हम 7 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद एक गीत बजेगा, उस गीत में हम खो जाएंगे और परमात्मा की याद का अनुभव करेंगे। ओम ओम Thank you.
प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजी, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले, परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पा ले।
शांति ओ शांति ओ शांति 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 शांति। ओम शांति। ये मूविंग मेडिटेशन कहते हैं, ऐसे हम घंटों भर एकाग्रता में भी हम बैठ सकते हैं, जिसको प्रैक्टिस करते हैं हम राजयोग सीखते हैं, तो ये एकाग्रता का शक्ति भी हमारे अंदर आता है। ये आपको मूविंग मेडिटेशन का बताया। बाकी एकाग्रता में भी हम बाबा के कमरे में जाकर अगर हम बैठते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम, अपने घर में भी या आश्रम में भी, कहां पर भी अगर आप जाके बैठेंगे आपकी उसकी शक्तियों का अनुभव होगा।
तो इजी वे में बताया, चलते फिरते उठते बैठते उस परम पिता परमात्मा को साथ साथी बनाना। जैसे अभी आपको ये क्यों कराया गया, आप हल्के रहो आपको कुछ तकलीफ नहीं, भारी होंगे तो सब प्रॉब्लम आते हैं। तो हल्का रहने के लिए परमात्मा कहते हैं मुझे साथी बना दो, पार्टनर बना दो, साथी। तो ऐसा साथी का अनुभव आप सभी ने किया, आप सबको पसंद आया, सबने अनुभव किया।